आज है 18 अगस्त दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बिहार में रैलियां की, 1,25,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा।
डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी उस समय रविशंकर प्रसाद ने पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे परियोजनाएं घोषित की थी। ये स्पेशल पैकेज के नाम पर पुराने जो घोषणाएं हैं उनको एक साथ रख के उन्होंने पेश कर दिया है।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। पाकिस्तान में मेडिकल के दाखिलों में पुरुष छात्रों के लिए हो रही है कोटा लागू करने की कोशिश।
आज जहां दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों को एक अच्छा प्रोफेशनल माना जाता है, काबिल डॉक्टर माना जाता है, वो शायद फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में नालायक लोग भी इसलिए डॉक्टर बन सकेंगे क्योंकि वो मर्द थे।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। थाईलैंड के अधिकारियों ने बम विस्फोट करने वाले संदिग्ध का एक वीडियो फुटेज जारी किया है। बैंकॉक में हुए इस विस्फोट में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। इस वीडियो में संदिग्ध को एक लंबी पीली टी शर्ट में देखा जा सकता है जो कि एक काले बैग के साथ बैठा हुआ है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने इसे अब तक देश में हुआ सबसे खतरनाक हमला करार दिया है। चीन ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में मारे गए लोगों में से नौ एशिया के नागरिक हैं। श्रीलंकाई संसदीय चुनाव के 225 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशनल पार्टी को 106 सीटें मिली हैं। वहीं यूनाइटेड पीपल फ्रीडम अलायंस को ने 95 सीटें जीती हैं। वहीं तमिल नेशनल अलायंस को 16 सीटें मिली हैं। जनता विमुक्ति परेरामूना ने 6 सीटें जीती हैं। वहीं ईपीडीपी को 1 सीट मिली है। दूसरी तरफ श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ईरान की उपराष्ट्रपति मासूमे इब्तिकार ने बीबीसी को बताया कि विश्व के 6 ताकतवर देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान की रिफॉर्मिस्ट पार्टियों का राजनीतिक प्रभाव पहले के मुकाबले अधिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते के बाद वो कट्टरपंथी पार्टियां कमज़ोर होंगी जो इस समझौते के खिलाफ थीं। मासूमे इब्तिकार ने कहा कि उन्हें लगता है कि समझौते से उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो इसके पक्ष में थे। इस समझौते के लिए उन सभी ने बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया। उन्होंने वो कर दिखाया और इस समझौते को एक शक्ल देकर अंजाम तक पहुंचाया जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस समझौते के तहत ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार का 98% हिस्सा नष्ट करना होगा और उसे अपने मौजूदा परमाणु सेंट्रीफ्यूज में से 2/3 को भी हटाना होगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों की निगरानी कर सकेंगे। बांग्लादेश की पुलिस ने अमरीकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय और अनंत विजय दास की हत्या के सिलसिले में एक ब्रितानी नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्रितानी बांग्लादेशी सादिक अली को दोनों ब्लॉगरों की हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस का कहना है कि सादिक अली के संबंध बांग्लादेश में प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन अंसारुल्ला बांग्ला टीम से है। पुलिस का बयान है कि इस गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हुई एक के बाद एक ब्लॉगरों की हत्या के और सुराग मिल सकेंगे। रूस की पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह को पकड़ा है जो पश्चिमी देशों की प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग करके अवैध रूप से पनीर बनाते थे। पुलिस के अनुसार राजधानी मॉस्को के पास 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि पश्चिमी देशों से तस्करी कर रेनेट नामक सामग्री लाते थे। इसकी मदद से वो अब तक $3 करोड़ यानी कि करीब 2 अरब रुपये की कीमत का पनीर बनाकर उसे सुपर मार्केट में बेच चुके हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद आज बिहार पहुंचे और चुनावी रैलियां की। बिहार के आरा और सहरसा में हुई रैलियों में उन्होंने राज्य को 1,25,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की। मोदी ने पैकेज की घोषणा करते हुए बिहार के विकास की बात की और राज्य की किस्मत बदलने की बात कही। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने राज्य की नीतीश सरकार पर तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने पिछली सरकारों की तरफ से दी गई राशि को अभी तक खर्च नहीं किया है। समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
बहुत ही जल्द सवेरे सवेरे मैं दुबई से आया, आपके पास पहुंच गया।
संयुक्त अरब अमीरात के अपने दौरे से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बिहार जा पहुंचे, जहां आगामी चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। मोदी पहले आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पटना बक्सर फोर लेन हाईवे का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने वहां एक सभा को संबोधित किया।
हम भोजपुर आए भाई।
नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में भोजपुरी में स्थानीय लोगों का अभिनंदन किया।
बाबू वीर कुंवर सिंह, ये धरती पर रौरा लोकान के बहुत बहुत अभिनंदन।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस सभा में बिहार के 1,25,00,000 रुपए के पैकेज का ऐलान किया। अपने भाषण में मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि बिहार को 2 बार पैकेज मिल चुके हैं, लेकिन उसका पैसा भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया।
राजनीतिक आश्रय लेने के लिए बिहार के स्वाभिमान को छोड़ करके दिल्ली दरबार में गए, गिर गिराए, इज्जत के खातिर कुछ दे दो, दे दो भैया दे दो। दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया और क्या दिया? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया।
बिहार को बीमारू राज्य कहने के उनके बयान पर नीतीश कुमार की आपत्ति पर भी मोदी ने चुटकी ली और कहा कि अगर बिहार बीमारू नहीं है तो उससे सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होगी। इसके बाद मोदी ने सहरसा में भी चुनावी रैली में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने आरा की अपनी घोषणा को फिर से दोहराया।
और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं 1,25,00,000 करोड़ कह रहा हूं, ये 40,000 करोड़ उसमें नहीं है। 40,000 करोड़ अलग, और इसलिए कुल पैकेज बन जाता है 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता की भलाई।
हालांकि चुनाव से ठीक पहले मोदी ने बिहार को 1,25,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैकेज के बजाय राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भी इस मांग को दोहराया था।
ये थी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। तो नरेंद्र मोदी का कहना था कि वे बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और राज्य के विकास के लिए पूरी राशि खर्च करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन आज मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी नहीं किया। मैंने रांची में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से इस बारे में सवाल पूछा।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पहले से जो योजनाएं चल रही थीं, उन्हीं का जो बजट था उसको एक साथ जोड़कर उन्होंने घोषित किया है कि हमने बिहार के लिए इतना बड़ा पैकेज बनाया है और घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो रेल परियोजनाएं नई नहीं है, जो रेलवे ओवर ब्रिजेज बनने हैं वो नए नहीं है, उनमें कई पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताए हैं वो प्रोजेक्ट पहले से ही दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चल रहे हैं। गंगा कोसी पर जो पुलों की घोषणा की है वो पुल पहले से बन रहे हैं। आईआईएम के निर्माण की घोषणा की है तो आईआईएम में पढ़ाई इस साल शुरू हो गई है और उसकी बिल्डिंग का निर्माण गया में होना है। स्किल डेवलपमेंट मेगा यूनिवर्सिटी की घोषणा की है तो जो स्किल डेवलपमेंट अभियान गवर्नमेंट का है उसके तहत हर राज्य में इस तरह के सेंटर खुलने हैं। डिजिटल बिहार के तहत उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं कि हम ये चीजें शुरू करेंगे। तो वो सारी चीजें, जब डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी उस समय रविशंकर प्रसाद ने पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे परियोजनाएं घोषित की थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नया नहीं है और ये स्पेशल पैकेज के नाम पर पुराने जो घोषणाएं हैं उनको एक साथ रख के उन्होंने पेश कर दिया है। और चूंकि मोदी बहुत फोर्सफुली चीजों को रखते हैं तो समय लोगों को लगा होगा, हमें भी लगा था एक बड़ा पैकेज है, लेकिन जब हम पीआईबी की साइट पर जाके डिटेल्स को देखा मैंने तो मुझे लगा कि इसमें कुछ नया नहीं है।
पर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो उसने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन आज मोदी के भाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं था।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और लोगों को उम्मीद थी कि आज विशेष दर्जे पर प्रधानमंत्री कुछ बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। शायद उनको ये लग रहा हो कि ये संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो मेरा सवाल ये है कि जब उनकी पार्टी सरकार में थी उस समय जोर शोर से ये मसला उठा, 2010 में ये मुद्दा यहाँ उठा था और उस समय भाजपा सरकार में थी, तो वो लोग भी मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री को जरूर बताना चाहिए था, जैसे पिछली बार वो कह रहे थे कि मेरे हाथ बंधे हैं और पार्लियामेंट चल रही है इसलिए मैं विशेष पैकेज की घोषणा नहीं कर सकता हूँ। तो आज भी वो कह सकते थे कि अगर उनके हाथ बंधे हैं या बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता तो उनको साफ साफ जनता के बीच ये बात रखनी चाहिए थी कि हम विशेष दर्जा दे सकने की स्थिति में नहीं है, या हैं तो कितने दिन लगेंगे, और अभी नहीं तो क्या फिर कभी इस पर विचार हो सकता है, कोई कमेटी बन सकती है, जैसे यूपीए सरकार ने कमेटी बनाई थी और उसमें चीजें निकल के आई थी कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इन तीन राज्यों का आया था कि ये सबसे पिछड़े राज्य हैं और इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई। तो प्रधानमंत्री को इस पर जरूर कुछ बोलना चाहिए था और वो नहीं बोले हैं, इससे यहाँ निराशा तो हुई है।
जो आज इन्होंने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की, उसमें उन्होंने कहा कि डेस्टिनी को, किस्मत को बदलना चाहते हैं बिहार की, तो इस तरह के जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पैकेज की घोषणा की है, इससे कितना जनता पर असर पड़ेगा आपको लगता है?
मुझे तो लगता है कि ये चुनावी जुमले हैं और जैसा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पहले बोल चुके हैं दिल्ली के चुनाव के दौरान कि ये चुनावी जुमले होते हैं और इनको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत खास असर पड़ेगा। अभी ट्वीट भी मैं देख रहा था, लोकल लोगों ने ट्वीट किए हैं कि क्या भाजपा यदि सरकार में नहीं आती तब भी इस घोषणा पर कायम रहेगी और इसी उत्साह के साथ इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, तो इससे दिख रहा है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं संशय है।
ये थे रांची से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव अब चंद महीने ही दूर है, लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के लिए एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है और इस चुनौती का नाम बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी, जो बिहार चुनाव में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ओवैसी मुसलमान समुदाय के हितों की बात करते हैं और उन्हें समर्थन भी मिलता रहा है, तो कितना बिहार में समीकरण को बिगाड़ सकते हैं ओवैसी, इसकी पड़ताल करती नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
बिहार इन दिनों हर तरह से सुर्खियों में है। पहले तो चुनावों के लिए दोस्त बने दुश्मन एक बार फिर दोस्त बन गए, यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने एक महागठबंधन की घोषणा की जिसमें दोनों के खाते में 100-100 विधानसभा सीटें आईं। इस गठबंधन में गांठ बांधने का काम किया कांग्रेस ने, जिसे 40 सीटों पर लड़ने की जिम्मेदारी दी गई। इधर विपक्ष में है भाजपा, जिसने पहले से मिला रखा है रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, लेकिन इन सभी समीकरणों को एकाएक बड़ा झटका दिया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हां, बिहार के सीमांचल क्षेत्र से ऐसा माहौल बनता दिख रहा है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। जाहिर है नीतीश और लालू के महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उस महागठबंधन की प्रमुख आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि आरजेडी के बलियावी गुलूम रसूल मानते हैं कि उन्हें ओवैसी से कोई खतरा नहीं है।
बिहार जज्बाती इशू या आप जज्बाती लबो लहजे से मुतासिर नहीं होगा। जो इशू इनका है उस इशू को लेकर के दो चार साल पहले उतरना चाहिए, ग्रास रूट से वर्क करना चाहिए। जब चुनाव का बिगुल बज गया है तब मुस्लिम मसाइल याद आ रहे हैं।
तीसरी बार लोकसभा में चुने गए असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति एक खास मुद्दे पर केंद्रित रहती रही है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम समुदाय का सुपरस्टार कहते हैं और कुछ मुस्लिम राजनीति के एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। जाहिर है ओवैसी मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करते रहे हैं और तमाम जगह उन्हें समर्थन भी मिला है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों के नेता कुछ कहें या ना कहें, अगर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे इलाकों से उतार दिए तो मुस्लिम मत किस तरफ पड़ेंगे कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तो और महागठबंधन से किनारा कर चुकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि एनसीपी नेता तारिक अनवर की राय थोड़ी अलग है।
सेक्युलर जो पार्टियां हैं उनका बहुत अहम रोल है, इसलिए ऐसे मौके पर अगर इस तरह की पार्टियां आगे आती हैं तो उससे जो है उनका परस्त ताकतें हैं या सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको ही इससे ताकत मिले। ये बात तो सही है कि जितनी भी सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो ये हमेशा दावा तो करती है कि वो समाज के वीकर सेक्शन का की आवाज उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन जब पावर शेयरिंग की बात आती है तो उन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है।
अभी तक तो बिहार में सभी बड़े राजनीतिक दल और नेता असदुद्दीन ओवैसी के कथित मंसूबों पर सीधी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। भाजपा की ओर से खुद प्रचार करने मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 125,000 करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा कर डाली है। अगर इस चुनावी समंदर में ओवैसी भी कूद गए तो ज्यादा नुकसान लालू और नीतीश को ही होता दिख रहा है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने संसदीय चुनाव में जीत का दावा किया है। वहां 225 संसदीय सीटों में से यूनाइटेड नेशनल पार्टी को सबसे ज्यादा 106 सीटें मिली हैं, वहीं यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस को 95 सीटों पर जीत मिली है। सत्ताधारी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के समर्थक राजधानी में पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर रनिल विक्रमसिंघे ने लोगों से एकता की अपील की और आम राय से सरकार बनाने का वादा किया है। हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने बीबीसी के सिंघला सेवा के संपादक राजेश जोशी से इस बारे में और जानकारी मांगी।
राजेश जी, राजपक्षे को तो जो श्रीलंका की बहुमत आबादी है वो तमिल विद्रोहियों का दमन करने को लेकर हीरो मानते आई है, ऐसे में उनकी हार के क्या कारण हो सकते हैं वहाँ?
अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 2009 में जब एलटीटी को पराजित किया था, महिंदा राजपक्सा की सदारत में एक तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद नेशनल हीरो जरूर बन गए थे महिंदा राजपक्सा, लेकिन बाद में उन पर और उनके परिवार पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिनको वो हमेशा खारिज करते रहे हैं। फिर श्रीलंका की जनता ने ये तय किया है कि अब शायद वो उनका नेतृत्व करने लायक नहीं है। हालांकि 83 सीटों की जीत उन्होंने जो दर्ज की है वो कम नहीं है, लेकिन उम्मीद उनको इससे ज्यादा की थी।
तो राजपक्षे का राजनीतिक भविष्य अब क्या दिखाई दे रहा है वहां?
देखिए, राजनीति में कभी किसी की ओबिचरी या राजनीतिक डेथ हो गई है, पॉलिटिकल डेथ हो गई है किसी भी लीडर की या विचार की, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। आज महिंदा राजपक्सा हो सकता है प्रधानमंत्री ना बन पाए, लेकिन कल क्या होगा अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हालांकि इस तरह की अटकलबाजियां जरूर हो रही हैं श्रीलंका में कि महिंदा राजपक्सा के लिए एक मामूली सांसद के तौर पर संसद में बैठना कितना मुश्किल होगा, एकमात्र सांसद बनकर वो कैसे संसद में जाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा महिंदा राजपक्सा के सामने रहेगा।
और राष्ट्रपति सिरीसेना का कद कितना बढ़ गया है अब श्रीलंकाई राजनीति में?
रोहित, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से महिंदा राजपक्सा के जो शासनकाल था उसके बाद मैत्रीपाला सिरीसेना जब राष्ट्रपति बने तो एक नई बयार तो श्रीलंका में चली। लोगों का ये कहना है, बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणीकारों का ये कहना है कि उससे एक खुलापन श्रीलंका में आया, जो एक डर का माहौल था वो डर का माहौल कम हुआ है, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। और जो ये नई शुरुआत की थी इसको शायद मैत्रीपाला सिरीसेना आगे ले जा पाएँ अब, ख़ासतौर पर तब जबकि उनकी मजबूती और एक तरह से बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि जो उनके आसपास के मुल्क हैं, भारत है, चीन है, उनकी भी अपना नज़रिया है श्रीलंका को लेकर के। भारत चाहता था कि महिंदा राजपक्सा ना आए, क्योंकि भारत की तरफ से एक बयान आया था चुनाव से 2-3-4 दिन पहले ही कि मैत्रीपाला सिरीसेना की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक नई शुरुआत हुई है श्रीलंका में। साफ साफ मतलब था, साफ साफ संकेत था कि हम उनका समर्थन करते हैं। हालांकि डिप्लोमेसी में, कूटनीति में इतनी साफ ढंग से बात नहीं की जाती है, तो बहुत परोक्ष तरीके से भारत ने कह दिया कि मैत्रीपाला सिरीसेना का हम समर्थन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन शायद महिंदा राजपक्सा के समर्थन में थे। चीन ने भी अरबों डॉलर का वहाँ पर श्रीलंका में निवेश किया है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी निर्माण कार्य वो श्रीलंका की कंपनियाँ वहाँ, चीन की कंपनियां वहां कर रही हैं। तो ये बात ज़रूर है कि अब जिस तरह से यूएनपी मजबूत हुई है, रणिल विक्रमसिंघे की पार्टी मजबूत हुई है और एक तरह से उसमें मुहर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की लगी है, तो उनकी मजबूती, उनका कद तो बढ़ा है।
बीबीसी की सिंघला सेवा के संपादक राजेश जोशी से बात कर रहे थे रोहित जोशी। भारत प्रशासित पुलिस का कहना है कि भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों ने एक दरगाह की सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मी की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी सर्विस राइफल छीनकर फरार हो गए। राइफल छीनने की घटना यहां आए रोज होती है और सैनिक अधिकारियों का कहना है कि नियंत्रण रेखा पर कड़ी सुरक्षा के कारण और पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी में मुश्किल होने की वजह से चरमपंथियों के पास हथियारों की कमी हो गई है और यही वजह है कि पुलिस और सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो सशस्त्र चरमपंथी सोपोर कस्बे की तुजर शरीफ दरगाह पर अचानक नमूदार हुए और वहां पर तैनात इंडियन रिजर्व पुलिस के स्थानीय कर्मचारी फयाज अहमद पर नजदीक से फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल फयाज को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने इन्हें मृतक घोषित किया। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाले चरमपंथी फयाज की सर्विस राइफल छीनकर फरार हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सोपोर उत्तरी कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सीमा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, के निकटतम जिलों बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा का केंद्रीय कस्बा है। पुलिस और सैनिक अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारतीय इलाकों में आने वाले चरमपंथी इसी कस्बे में सक्रिय होते हैं। पुलिस के मुताबिक जून में यहां चरमपंथी गुटों की आपसी लड़ाइयों में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। सेना का कहना है कि यहां सक्रिय चरमपंथियों के पास अब लड़ने के लिए हथियार नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ी सुरक्षा के कारण हथियारों की स्मगलिंग अब कठिन बना दी गई है। यही कारण है कि अब चरमपंथी राइफल स्नैचिंग यानी हथियार छीनने की कार्रवाइयां करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की कई घटनाएं उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में घटी हैं। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में चरमपंथ की तीव्रता बहुत कम हो रही है। सेना के मुताबिक इस वर्ष के पहले 7 महीनों में हिंसा की 25 घटनाएं घटी, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। इस बीच सेना ने बताया कि आज सुबह नियंत्रण रेखा के आरसपोरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करके फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाती रही हैं। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की इन घटनाओं में अब तक कम से कम 10 नागरिक मारे गए हैं। हिंसक घटनाओं में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के सुरक्षा सलाहकार कुछ ही दिन में दिल्ली में भेंट वार्ता कर रहे हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
पाकिस्तान में लड़कियों को मेडिकल कॉलेजों से मिलने वाली सीटें विवाद का विषय बन गई हैं। मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आधे से अधिक दाखिले तो महिलाओं के होते हैं, लेकिन केवल 23% ही आगे चलकर डॉक्टर बनती हैं, और इसका एक कारण घरेलू समस्या माना जाता है। अब पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल दाखिलों में पुरुष छात्रों के लिए कोटा लागू करने की कोशिश कर रही हैं। इसके तहत 50% सीटें पुरुष छात्रों को दी जाएंगी। इस नीति को अब अदालत में चुनौती दी जा रही है। इस्लामाबाद से अंबर शमसी की ये रिपोर्ट।
हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। हमने रिश्ते भी कराए हैं और उसमें जैसे आप ये देखें, ये एक रिश्ता हमने कराया था। ये हमारे एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल फैमिली है, ब्रिगेडियर साहब हैं, इनकी बेटी है वो डॉक्टर थी, और उनके लिए फिर ये लड़का जो आया है वो ये
इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेडरल मेडिकल और डेंटल कॉलेज के नौजवान डॉक्टर के लिए एक लेक्चर चल रहा है। छात्र गोल में इस पर बैठे हैं, जिनमें 12 से 15 महिलाएं हैं और सिर्फ 3 मर्द। ऐसा लगता है कि मेडिकल स्कूलों में लड़के लड़कियों से ज्यादा अनोखे हैं। डॉक्टर जावेद अक्रम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जहां महिला छात्र की तादाद करीबन 70% है और मर्दों की 30%।
ज़ाहिर है अगर लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में आती हैं तो वो बेहतर डॉक्टर भी बनेंगी, वो मेडिकल कॉलेज में भी ज़्यादा मेहनत करेंगी। ज़ाहिर है वो इसका मतलब ज़्यादा मेहनती हैं, तो हमें अच्छी डॉक्टर्स मिलेंगी, अच्छी लेडी डॉक्टर्स मिलेंगी। ये एनालिसिस करना चाहिए, और ये किया भी गया है कि वो क्यों बाद में काम नहीं करती, तो अपनी कमी पूरी जो उनकी है वो रहती क्यों है।
वो मानते हैं कि कुछ महिला छात्रा के माता पिता को उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने में दिलचस्पी है।
हर किसी का अपना परसेप्शन होता है। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज में लड़की को दाखिल करा दिया अब शादी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ अपने मुआशरे का माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हमें इस चीज़ से अब हट जाना चाहिए। ये वक्त आ गया है कि दुनिया कहीं से कहीं जा रही हैं, खवातीन हमारी एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं, वो चांद पे जा रही हैं। हमें इन बच्चियों को इक्वल मौके देने चाहिए, और उनको अगर वो काम करना चाहें तो उनको करने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए।
कामरान अहमद एक मैकेनिक की दुकान के पास एक मैरिज ब्यूरो चलाते हैं जो खूब चलता है, और उनके बेहतरीन ग्राहक वो माएँ जो डॉक्टर बहुएँ ढूंढती हैं।
इतना आसान होता है कि आप समझ लें कि लड़की बस समझ लें कि वो बस किसी तरीके से पता चल जाए लड़की डॉक्टर है, और वो वहाँ पे उसके लिए, और अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर यानी कि गुड लुकिंग है और थोड़ी सी भी उसके अंदर ग्रूम है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर लड़की के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप देख लें, मेरे अपने तजर्बे में है कि आप आम लड़कियाँ तो ना उनकी अबव एज हो चुकी हैं, 30 से ऊपर जा चुकी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर लड़की 27-28 से ऊपर की मुझे कोई लड़की आप निकाल के लाएँ डॉक्टर जो उसकी शादी नहीं हुई हुई है। इसकी वजह यही है कि वो डॉक्टर लड़की के लिए रिश्ते मतलब समझ लें कि ढूंढ रहे हैं उनको, और वो मिल नहीं रही। अगर आपके पास 2-4 हैं मुझे बताएं, मेरे पास लड़के हैं।
पत्रकार फसी जका, जिनका कहना है कि डॉक्टर का पेशा छोड़ने वाली सिर्फ महिलाएं नहीं होती, मर्द भी हैं, और इस मसले के हल के लिए लड़कियों को दाखिला लेने से रोकना नहीं चाहिए।
हमें ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स चाहिए फीमेल पेशेंट्स के लिए, ये कल्चरल रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो सप्लाई कम कर दी तो वो मसला आपका ज़्यादा होगा।
ये हैं पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल की अधिकारी डॉक्टर शाइस्ता फैसल, जिनकी रिसर्च को बुनियाद बनाकर काउंसिल ने फैसला किया कि दाखिलों में मर्द और महिलाओं की तादाद बराबर रखनी चाहिए।
हमारे जो लड़के हैं वो भी नहीं रहते हैं, वो कुछ CSS कर लेते हैं, कुछ MBA कर लेते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं। हुकूमत एक सब्सिडी देती है, ये जो 2-3 हज़ार वो देते हैं मेडिकल कॉलेजेस में जो हुकूमती होते हैं, उसका जो असली बजट होता है यूनिवर्सिटी का, तो वो फिर हर स्टूडेंट का कोई शायद 1 लाख रुपए लग रहा होता है महीने का। तो उनको जो ये सब्सिडी, ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप है। तो अगर ये प्रोफेशन छोड़ दें तो ये पैसा ज़ाया हो जाता है। हमारे मुल्क को डॉक्टर्स चाहिए। तो ये मसला दोनों लड़कियों का है और लड़कों का। हमारा मसला ये है कि हम डॉक्टर्स को कैसे प्रोफेशन में रखें, ये नहीं कि लड़कियों को कैसे पीनलाइज करें कि ये नहीं आए या कम आए।
मुल्क में आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की बहुत कमी की वजह से यही हल सबसे बेहतर है। शहजाद अकबर, जिन्होंने इस कोटा को लागू होने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, उनका कहना है कि ये पॉलिसी न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अनएथिक भी है।
आज जहां दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों को एक अच्छा प्रोफेशनल माना जाता है, काबिल डॉक्टर माना जाता है, वो शायद फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में नालायक लोग भी इसलिए डॉक्टर बन सकेंगे क्योंकि वो मर्द थे।
और मेडिकल कॉलेज में मैंने दो छात्रों से उनकी राय पूछी।
मोस्टली अगर वो डॉक्टर्स फीमेल्स चाहती भी हैं, वो जॉब करना चाहें, तो उनके ससुराल वाले कहते हैं नहीं, हमें डॉक्टर बहू चाहिए लेकिन गोल रोटी बनाए घर में। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो इट्स बेटर कि अगर 50-50% हो जाए तो।
अगर आपके साथ ये ऐसी सर्कमस्टांसेस हों कि आपकी शादी हो गई हो और आप पे बहुत दबाव हो कि नहीं हम आप कर पा रही और आपको अपनी फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी?
देखिए, मैं जिस माशरे का हिस्सा हूँ उसमें तो यही सिखाया जाता है कि जो ख़ानदान और फैमिली है प्रायर। और पर्सनली मैं यहाँ आ गई तो यस, आई एम एडजस्टेड, आई एम एक्लेमेटाइज हो गई हूँ मैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांस होता है तो पहले तो मैं उन्हें समझाऊँगी, और अगर वो नहीं समझे तो मैं उनकी बात मान लूँगी।
सब इस मर्ज को मानते हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी है और ख़वातीन बड़ी तादाद में डॉक्टरी का पेशा छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन इसके इलाज पर इत्तेफाक नहीं है। शायद हल यही है कि उन लड़कियों पर कोटा लगाया जाए जिनके ससुराल उन्हें अपनी मर्जी से काम करना नहीं देते। अंबर शमसी, BBC, इस्लामाबाद।
और अब समय है खेल समाचारों का। मेरे सामने आदेश कुमार गुप्ता। आदेश जी, क्या है?
बहुत जल्दी से साइना नेहवाल से मुलाकात करा देते अपने श्रोताओं की, जो आज ही हैदराबाद में वापस लौटी हैं। पिछले दिनों उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था।
बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के साथ मैं घर वापस आई हूँ, और काफ़ी दिनों का मेहनत लगा है, काफ़ी हार्डवर्क गया है इसमें, और जो परफॉर्मेंसेज आई हैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज थी इस टूर्नामेंट में, और थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली मैं। ऑफ कोर्स फाइनल्स में और थोड़ा बेटर खेल सकती थी और अच्छा परफॉर्मेंस डाल सकती थी, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी बैक विद द सिल्वर मेडल, एंड आई होप कि और अच्छा प्रैक्टिस करूँ आने वाले टूर्नामेंट्स में और अच्छा परफॉर्म करूँ।
उधर टेनिस के कोर्ट पर सिनसिनाटी ओपन में भारत के लिएंडर पेस और उनके नए जोड़ीदार स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने पुरुष युगल वर्ग के पहले दौर में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन और फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 1-6, 6-1, 10-6 से मात दी।
धन्यवाद बहुत बहुत खेल समाचारों के लिए। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की है। बिहार के आरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने ये घोषणा की। श्रीलंका में सोमवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूनाइटेड नेशनल पार्टी को 106 सीटें मिली हैं और यूनाइटेड पीपल फ्रीडम अलायंस को 95 सीटें मिली हैं। थाईलैंड के अधिकारियों ने बम विस्फोट करने वाले संदिग्ध का वीडियो फुटेज जारी किया है। बैंकॉक में हुए इस विस्फोट में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। इस वीडियो में संदिग्ध को एक लंबी पीली टी शर्ट में देखा जा सकता है। ईरान की उपराष्ट्रपति मासूम इब्तिकार ने BBC को बताया कि विश्व के 6 ताकतवर देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान की रिफॉर्मिस्ट पार्टियों का राजनीतिक प्रभाव पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। बांग्लादेश की पुलिस ने अमरीकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय और अनंत विजय दास की हत्या के सिलसिले में एक ब्रितानी नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक हेमंत कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।